के हैं, समझदार हैं। परंतु माया इतनी प्रबल है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अधिक परेशान रहता है। भगवान कृष्ण की अर्जुन पर कितनी कृपा है, उनकी सेवा में रहते हुए भी अर्जुन के हृदय में शंकाएं खत्म नहीं होती। संसार रूपी रण क्षेत्र में खड़ा है ये प्रत्येक बुद्धिजीवी की दुविधा है, केवल अर्जुन की नहीं। कि मैं किस प्रकार उन लोगों के साथ जो मुझे दुख देते हैं, पर हैं वो मेरे अपने ही, मैं उन पर हथियार कैसे उठाऊं? अर्जुन नहीं, हम भी उसकी जगह होते तो शायद यही बात भगवान के चरणों में अर्पित करते। थोड़ा दिखा व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, क्योंकि पूर्णता पूर्णता यानी परफेक्शन उससे दूर है और निचली स्थिति से वो निकल आया है, बीच की स्थिति में है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है जिनको हम मूर्ख कह देते हैं, वो भी सुखी है। पर वो लोग बड़ी गिनती के लोग जो पूर्ण हैं, ज्ञानी हैं, सच्चे भक्त हैं, वो भी सुखी हैं। किंतु जो बीच के रास्ते में लोग हैं वो ही दुखी। तो इस दुख से ये दुख क्या है? भगवान बुद्ध ने केवल एक ही रास्ता लिया और एक ही उपदेश सब व्यक्तियों को दिया, जो भी साधक आए, जो भीतर की शांति के जिज्ञासु थे, चाहने वाले थे, एक ही बात को कहा करते थे कि अपने आप से पूछो कि दुख क्या। हम सब दुखी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई एक आपको छोड़ के संसारिक वस्तुओं से सुख मिल जाता हो ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई विद्या से सुख मिल जाता हो मिलता है कुछ, परंतु जिस सुख की खोज में हमें वो नहीं मिलता। संतान हो जाती है, बच्चे अच्छे होते हैं, तब भी लोग बात दुख ये बात नहीं, ये कमी है, वो बात है, वो कमी। मैं किसी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं देखता। भगवान कृष्ण भक्तों के लक्षणों में संतुष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। संतुष्ट कोई है ऐसा व्यक्ति हम में जो प्रतिदिन संतुष्ट रहता है? एक कश्मकश में रहता है, ये कर लू वो कर लू, ऐसा करूंगा, इस जन्म में करूंगा, अगले जन्म में, अगले जन्म की सोचता है, वर्तमान की नहीं सोचता है, तो वो दुखी है। भगवान को सबसे ये कहते हैं, बताओ दुखी तो है, और ये तो बताओ दुख क्या है, किस दुख के लिए तुम यहां आए हो, जिसकी निवृत्ति मुझसे चाहते हो, वो दुख क्या है और उस दुख का कारण क्या है? और यदि दुख से निवृत्ति आपको मिल जाए तो उस वक्त आपकी स्थिति कैसी होगी? चार बात चार रूप उन्होंने बताए। कोई भी व्यक्ति उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा सकता, पर हम अपने आप से पूछें, हमारे भीतर में भी भगवान बैठे हैं, भगवान कृष्ण बैठे हैं, राम बैठे हैं, बुद्ध बैठे हैं, तो पूछते रहते हैं कि दुख तुम्हें किस बात का है, क्या समझते हो कि क्या दुख है? ईश्वर की संतान है, एक ही पिता की संतान है। हमें समझ नहीं आती तो तब भी हम अपने आप को पाते हैं कि कोई ना कोई हमने कमी है, वही दुख है, उस कमी को दूर करने के लिए हम व्याकुल रहते हैं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि मेरे भीतर में किसी प्रकार की कमी हो, वो चाहते या अनचाहते उसकी एक टेंडेंसी है, इंस्टिंक्ट है, एक छिपी हुई चाह है कि मुझे वो सुख मिले जिसकी प्राप्ति के पश्चात मुझे किसी प्रकार का दुख न मिले। मृत्यु भी दुख है, जन्म भी दुख है, पैसे का अभाव भी दुख है, पैसा होना भी दुख है, संतान का न होना दुख है, संतान का हो जाना दुख है, तो फिर सुख क्या है? सुख केवल पाप का जो निजी रूप है, तत्वमसी तुम तो वही हो, ईश्वर हो, ईश्वर की संतान हो, भिन्न भिन्न तरीके से महापुरुष कहते हैं। वास्तव में आप आत्मा ही हो, परमात्मा ही हो। ये जो शरीर दिखता है ये आपका रूप नहीं, इसके ऊपर और वर्ण है प्राणों का, वो भी आपका रूप नहीं, उसके ऊपर मन का रूप है, मन का वर्ण है, वो भी आपका रूप नहीं, बुद्धि का वर्ण है वो भी नहीं आपका, ज्ञान का है, आनंद का है वो भी नहीं। तुम तो इसके जो परे है वो आपका वास्तविक रूप है, और उस रूप में स्थिर होने से, स्थित होने से ही आप सब दुखों कष्टों तकलीफों से मुक्त हो जाएंगे, और हमेशा हमेशा के लिए आपको आनंद की प्राप्ति मिल जाएगी। आनंद अनंतता, ये नहीं तो शरीर छूटने के बाद अंत छूट जाएगा, नहीं, न आपकी कभी मृत्यु होगी न कभी आपकी सुख होगी। ये सुख, ये आनंद, ये ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति डायरेक्टली या इंडायरेक्टली सीधे रास्ते से या उपयुक्त भेद से कहता है कि मुझे तो सुख चाहिए। तो परमात्मा ने हमें बड़ी कृपा की, हम पर नींद का उपहार दिया, परंतु उस उपहार का भी हम सदुपयोग नहीं करते। रात को 12 बजे तक रेडियो सुनते हैं, सुबह उठते ही घर में टीवी लग जाता है, रात को सोते सोते में भी दिन के जितने कार्य हैं हम सोचते हैं कि वही खाली टाइम है, उसकी जरूरत उन उलझनों को सुलझा दें, तो स्वप्न आते रहते हैं। इस सबकी अवस्था है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि मैं जागृत अवस्था में तो ईश्वर के चरणों में रहता हूँ, परंतु स्वप्न अवस्था में नींद के टाइम पे मेरा अंकुश अपने ऊपर खो जाता है, अर्थात मेरे पुराने संस्कार मेरे सन्मुख आ जाते हैं, या दिन की दिनचर्या जो होती है वो आ जाती है, मतलब कि उनको भी गहरी नींद नहीं आती थी, गहरी नींद में स्वप्न नहीं आते। तो परमात्मा ने हम पर कृपा की और ये प्रसादी प्रदान की कि हम थोड़े समय के लिए आराम से सो जाएंगे। तो स्थिति हमारे सच्चे स्वरूप से मिलती जुलती है कुछ कुछ, जितनी पद्धतियां हैं, जितने साधन हैं, जितने उपाय हैं, हमारे देश में या बाहर के मुल्कों में सबका सार यही है कि हम प्रज्ञा अवस्था में जाएं, ज्ञान अवस्था में जाएं, वो किस प्रकार जाएंगे बड़ी कठिन है। नींद के समय में क्या होता है, मन शांत हो जाता है, संकल्प विकल्प नहीं होते, कोई वाद विवाद नहीं है, आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है, न हर्ष है न शोक है, किसी का किसी प्रकार की निंदा उत्पत्ति नहीं है, एक स्थिर अवस्था है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, पहला अध्याय तो है इंट्रोडक्शन का, भूमिका का है रण क्षेत्र का, दूसरे में भगवान स्थित प्रज्ञ अवस्था का वर्णन करते हैं। अर्जुन शास्त्र जी तो था परंतु साधना नहीं की थी, इसलिए वो प्रश्न करता है भगवान से कि स्थित प्रज्ञावस्था का व्यक्ति कैसे बैठता है, कैसे सोता है, कैसे व्यवहार करता है। तो भगवान लक्षण बताते हैं स्थित यानी ज्ञानी के, जो प्रज्ञा यानी आत्मा में आत्म ज्ञान में तो डामाडोल नहीं होता है, क्योंकि सुख आत्मा के पास पहुंचने के लिए हमें भीतर में जो अवस्था गाढ़ निंद्रा में होती है वो स्थित प्रज्ञा में होती है। कोई स्थिति जब तक नहीं होती हमें भीतर के ज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकती। तो उसी के लिए उस रास्ते पर चलने के लिए गुरु महाराज ने छोटे से शब्द में हमें रास्ता बताया, हमारा मार्गदर्शन किया। साधु मन का अपमान क्या है, ये अहंकार ही है जो सारी मुसीबतों सारे दुखों का कारण है। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा, उन्होंने परीक्षा लेकर अहंकार का दोनों की समन्वता की। हमारे शास्त्रों ने तथा सब महान संतों ने किसी बात को लिया कि किसी तरीके से इस अहंकार से मुक्त हो। साधो मन का मान, ये मन का मान क्या है, तुलसी पंक्ति में बताया, काम क्रोध संगत दुर्जन तांते एन स्वभाव। अहंकार ऐसा सरलता से नहीं छूटता है। हम सब कह देते हैं भाई अहंकार से बड़ा मूर्ति है, ये नहीं छूटता है। कुछ गुरु महाराज फरमाया करते थे कि सीधा साधा व्यक्ति तो भले ही अहंकार से मुक्त हो जाए परंतु संतगण पढ़े लिखे विद्वान तो ये अहंकार से मुक्त नहीं हो सकते। इनको मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अहंकार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए बड़ा ही समय लगता है। ईश्वर की कृपा हो तो इनका अहंकार जाता है, इनको ही अहंकार से मुक्ति। इसीलिए संतों ने रीति के लिए प्रार्थना की, और नानक मैं ना ही हो नानक गरीब ठह प्या द्वारे हर मेल लियो बड़े आए। जब तक गरीब इंसान नहीं बनेगा वो अहंकार दिन अति दिन अति मैं कुछ नहीं, शरीर भी मेरा ये अहंकार का योग है, हमारी आसक्ति अपने शरीर के साथ, हम अपने शरीर को ही सुख पहुंचाने के लिए सारे कार्य करते हैं। इतने असक्त है गीता को अनशक्ति योग कहा है, महात्मा गांधी ने इसको अनशक्ति योग कहा। और प्रथम चरण जो है असक्ति का वो हमारा शरीर है, ये भी अहंकार का रूप है। अहंकार का रूप हमारा मन बुद्धि और आनंद में फंस जाना, ये सब असक्ति है और ये अहंकार की ही प्रजा है। तो गुरु महाराज कहते हैं अहंकार को छोड़ो, ये छोटी मोटी बातें तो छूट जाएगी, काम को संगत दुर्जन की जो है ये भी छूट जाएगी, परंतु अगला जो चरण है वो बहुत कठिन है। रण क्षेत्र में लड़ने के लिए उसकी आवश्यकता है, वो स्थित प्रज्ञावस्था आनी होगी, वो द्वंद्वों से मुक्त होना पड़ता। ये अहंकार के दो द्वंद जो हैं, प्रत्येक बात के दो रूप जो हैं, सुंदर द्रुपदा सर्दी गर्मी मित्र शत्रु आदि, इन द्वंद्वों से व्यक्ति नहीं छोड़ता, मान अपमान आपका प्रत्येक विचार आप देखिए, कभी सोचें और अपने विचार को देखिए, प्रत्येक विचार में द्वंद्वता होती है। कोई विचार नहीं जिसमें द्वंद्वता ना हो, पागल हो जाते हैं इन विचारों में। तो इसलिए गुरु महाराज शुरू करते हैं कि पहले अहंकार को छोड़ो, अहंकार का मतलब यह है कि अपने आप को जो आप ईश्वर से ज्यादा समझ रहे हैं, समझो इस बात को और इस पृथकता को छोड़ो। इस छोड़ने के लिए पहले रास्ता चलना पड़ेगा, अज्ञान को छोड़ो। अज्ञान के कारण अहंकार उत्पन्न होता है और अज्ञान की संतान आगे चलते आगे बढ़ते चले जाओ। वो है दुर्ग स्त्री पुरुष मौन अपमान और शोभा। तो जब तक हम द्वंद्व को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता। हमारी स्थिति वो गाढ़ निद्रा की सुषुप्ति की अवस्था नहीं आ सकती। कितना जोर मर्जी लगा दीजिए, पुस्तकें पढ़ लीजिए, साधना कर लीजिए, जो मर्जी कर दीजिए, नहीं आ सकती। ये हम जितनी साधना करते हैं सुषुप्ति में प्रवेश करने के लिए करते हैं, और सुषुप्ति में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक हम अपने द्वंद्व को से मुक्त हैं। तो जब द्वंद व्यक्ति हो जाता है अज्ञान के कारण अहंकार से हुआ, अहंकार की आवश्यकता है कि द्वंद है कि मुक्त उसके साथी हो। जब तक इनसे हम छूटेंगे नहीं, हमें सच्चा ज्ञान अर्थात हम अपने भीतर में अपने ही स्वरूप को नहीं देख पाते। कितनी दुख की बात है, वो हमारे भीतर में है और हम उसको देख नहीं पाते। ये दुख है और इसी दुख में व्यक्ति अंतिम समय में रोना वश्यता करता है। कितने वर्ष हो गए साधना करते, अब भी आप देख लीजिए कि हम द्वंद्वों से मुक्त नहीं हैं। दोष पढ़ते हैं, ये गुरुवाणी दोष पढ़ते हैं। ये नाइन्थ गुरु गुरुदेव महाराज साहब की वाणी है, बड़ी सादा हिंदी में है। क्यों इसमें क्यों असर क्यों है? क्योंकि उनके जीवन के का रहस्य है। चांदनी चौक में उन्होंने अपना बलिदान दिया, ये केवल बातों से नहीं होता। उनके सम्मुख भाई मतीदास जी का बलिदान दिया, औरंगजेब कहने लगे ये डर जाएंगे कि बहुत बातें कर रहे हैं ज्ञान की, इनको दिखाते हैं पहले एक घटना इनके सामने घटित हो जाए, शायद ये डर जाएंगे, फिर बात मान जाएंगे कि मुसलमान बन जाएंगे। भाई मतीदास जी जहाँ ये फारा बना हुआ है ये उनकी याद में, उनको उनका वध किया है, आरा लेके जैसे लकड़ी काटी जाती है उनके शरीर को सर से लेकर पांव तक दूर से काटे। कौन ऐसे सीन को देख सकता है? दिन से ये शब्द निकले, उनको डराया धमकाया जा रहा है और उनका वध किया है। तो इन द्वंद्वों से मुक्त, शरीर क्या, क्या शरीर ही क्या, दुख क्या, सुख क्या, बातों से नहीं द्वंद ये खत्म होते। ये बड़ा कठिन है। भगवान कृष्ण को पहले ही क्यों कहना पड़ा? जब तक व्यक्ति इनसे मुक्त नहीं होता वो इस संसार सागर से मुक्त हो ही नहीं सकता, इस रण क्षेत्र क्षेत्र में वो सफल हो ही नहीं सकता। हमारा व्यवहार ही है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये देख लीजिए रोज, कोई शत्रु है कोई मित्र है। इसी ही दुविधा में सारा दिन हमारा निकल जाता है, यही विचार हमारे होते हैं। तो सफलता के लिए, साधना में सफलता के लिए अर्थात अपने ही स्वरूप को पहचानने के लिए पहले अहंकार को छोड़ना, अज्ञान को छोड़ना पड़े, उसके बाद द्वंद्व को छोड़ना, तब जाके अपने स्वरूप की अनुभूति होगी। उसी अनुभूति के परिणाम स्वरूप हम सब दुखों से कि यही एक रास्ता है। इसी रास्ते को सब महापुरुषों ने बताया। महापुरुष कोई भी हो, चाहे हमारे देश के महापुरुष हो, चाहे विदेश के हो,
सब खास एक तरीके से उन्होंने समझाया, मतलब इसका ने भी यही कहा
कठिन है। शरीर में तनिक सी तकलीफ हुई बर्दाश्त नहीं है, ये अज्ञान है। जो आत्मस्थित व्यक्ति होता है वो दुख सुख से मुक्त होता है, चाहे शरीर का दुख हो, चाहे मन का दुख हो, चाहे बुद्धि का दुख हो, चाहे आत्म दुख हो। कई प्रकार के दुख पतला है, भौतिक अनुभौतिक संसारिक माया के कई प्रकार की है, वो सबसे प्रभावित है। वो एक ऐसे आनंद में रहते हैं कि जहां किसी बात की आवश्यकता नहीं, पढ़े लिखे व्यक्ति है। आपको जो भी साधन अच्छा लगता है वो अपनाइए, इसमें कोई तर्क नहीं। मुझे प्रेम जी एक महापुरुष की सेवा में ले गए, आप उनके श्रद्धालु थे, मैं उनकी शरण बैठा। वो कहने लगे, बड़ी कृपा की उन्होंने, कि मैं परोक्ष ज्ञान में विश्वास नहीं रखता, मैं अप्रोक्ष ज्ञान में विश्वास करता। अप्रोक्ष कहते हैं चक्षुदय डराती, परोक्ष कहते हैं मार्ग का रास्ता, ये ईश्वर की प्राप्ति भक्ति द्वारा। तो मैंने उनसे कुछ वास्तव में उन्होंने मुझे देखा कि मैं इच्छित हूं, छोटे सीखी थे संतु, उन्होंने वेदांत को अपनाया, तो उन्होंने मुझे भी ये समझा कि मैं बाहर की क्रिया में विश्वास रखता। तो ये कोई बात नहीं, महापुरुष की प्रसादी थी, उन्होंने कहा। तो मैं आपको कहता हूँ इसमें कोई अंतर नहीं है, इसीलिए ये विशेषता है गीता में कि ज्ञान पहले तो ज्ञान समझा दिया, संत का गुण ज्ञान अर्जुन को दे दिया। इस ज्ञान देने के पश्चात भी अर्जुन प्रश्न किए जा रहे तो धर्म में, तो कह रहा था कि गीता में ज्ञान से आरंभ होती है, साधना आरंभ होती है, परंतु तब भी साधक पूछता रहता है ये क्या बात है, वो क्या बात है। तो भगवान ने समझाया, चाहे कर्म योग से चलो, चाहे भक्ति से चलो, चाहे संन्यास से चलो, चाहे तांत्रिक से चलो, किसी रास्ते से चलो, पहुंचोगे एक ही जगह पर। और चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, परमात्मा पिता सबका एक ही है, किसी को वो आपका पिता कोई ज्यादा नहीं। हम सब एक ही पिता की संतान हैं, जिसके सभी धर्म है या जिसका कोई धर्म नहीं। ये ईद की जो उत्पन्न की गई है ये अहंकार है। जो महापुरुष आते हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनके पास, वो तो एकता से सब सिखाते हैं, परंतु उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके जो अनुयायी होते हैं वो प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं, वो संप्रदाय बना देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने सब जातियों को इकट्ठा बैठा कर दीक्षा दी, अमृतदान दिया। उस अमृतदान में एक तरीका है कि एक दूसरे का झूठ न देते हैं, ताकि उनके मन में घृणा न रहे छोटे व्यक्ति के प्रति या बड़े व्यक्ति के। ब्राह्मण भी शूद्र से ही उत्तर पीता है और शूद्र भी ब्राह्मण से। सबको इकट्ठा किया, बड़ी बुरी हालत रही हमारे देश में, जातिवाद ने बड़ा हमारा नुकसान किया। परंतु गुरु गोविंद सिंह जी के जाने के बाद, क्योंकि आए तो वही आधार तो वही है, हिंदू जाति है, वह जातवाद कितने लोग होंगे सिखों, हजारों ही बरादरी, हजारों ही जाति एक दूसरे से दूसरे में विवाह नहीं करते थे पहले, आप थोड़ा सा शुरू हुआ है मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, वहाँ के शहर के दो एरिया थे, वहाँ के लोग आपस में शादी विवाह नहीं करते थे, इतने बटे हुए हम रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य रहा है, और इसी दुर्भाग्य के कारण हमारे देश का जो कत्ल हो रहा है परमात्मा बचा सकता है। तो कह रहा था कि हमारा ध्येय क्या है, दुख की निवृत्ति का साधन क्या है, वो यही अपने आप को पहचान सकते। रास्ता तो आपको अच्छा लगता है, आप स्वतंत्र हैं, इससे कोई तर्क नहीं, किसी महापुरुष ने किसी के धर्म को बदलने की कोशिश नहीं की। हमारे कुछ दादा गुरु हिंदू थे, उनके गुरु मुसलमान थे, दादा गुरु बड़े ही उनके भक्त थे, उन्होंने कहा यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी इस्लाम कबूल कर लूंगा। उस महापुरुष ने गज के कहा कि तुम क्या करेंगे, मेरा तुम्हारा संबंध आत्मक है, शरीर का नहीं। तुम हिंदू के घर में पैदा हुए तो हिंदू की शरीयत को, हिंदू के धर्म, हिंदू धर्म का पालन करो। जहां तक मेरा तुम्हारा संबंध है वो आत्मिकता का है, वहां ये हिंदू मुसलमान का क्या जवाब। तो जो अन्यायी होते हैं करते तो शुरू में श्रद्धा से है, परंतु आने चल के हमारा पतन हो सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता। एक महापुरुष नाम नहीं लेना चाहता, अपने ही संप्रदाय के बुजुर्गों को मिलने गए, उनके दादा गुरु एक ही, परंतु भाई भाई आपस में मिलने को तैयार है। ये छोटे मोटे आदमी की बात नहीं, बड़े लोगों में बहुत ही नीचता होती, कहने जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं वो आप स्वयं गुमराह हुआ है। तो हमें दीनता के साथ, क्योंकि अहंकार का दूसरा रूप है दीनता, भगवान आगे जा रहे हैं, लीला कर रहे हैं, सुधा पीछे पीछे वो हाथ छोड़ देते हैं। भगवान सुधा जी क्या कहते हैं, अब क्या करोगे, हाथ जोड़ोगे, अब तो मैंने आपको हृदय में से पकड़ लिया, अब काम करोगे। यही हम सब में करना है, जकड़ने का मतलब ये है कि भीतर का जो ज्ञान, भीतर की जो अनुभूति है, भीतर का जो प्रेम है, भीतर में जो अमृत है, भिन्न भिन्न शब्द से ये कहते हैं, बात ठीक ही है। अमृत भी उसको कहते हैं, प्रेम भी उसको कहते हैं, आत्मा किसी को कहते हैं, और नाम भी उसी को ही कहते हैं। नाम और नाम ही परमात्मा और उसका प्रकाश ठीक ही बात है। परमात्मा को ही नाम, माई मैं धन पायो हरि नाम, मन में धाम छूटते होकर बैठे, वो हर जो सुविधा की है वो ही शक्ति हो जाती है जिसको परमात्मा मिल जाता है, नाम मिल जाता है। नाम एक सीढ़ी है, ऊपर के छत पर जाते हैं, नीचे चरण पर चलते हैं, कितनी सीढ़ियां चलते हैं, ये एक साधना है। जब वो सिद्धि पर पहुंच जाती है तो साधना सिद्धि को प्राप्त करके वो नाम को चलाती, शुरू से लेकर अभी तक नाम ही नाम सकता है, अंत में जब वो परमात्मा में एक हो जाता है असली नाम वो। पहले पद्धति है, साधना है, अंतिम नाम का रूप जो है वो सिद्धि है। परमात्मा से कर प्रार्थना है, आप सबको वो
अपना प्रकाश दें, ज्ञान दें, ध्यान दें, सुख दें, स्वास्थ्य, क्योंकि ये जीवन मिला है, ये शेर मिला है, बड़े कठिनाई से पता नहीं कितने हमने अच्छे काम किए हैं, पर कोई यहाँ आकर जो हमने विश्वास परमात्मा को दिया था कि इस जीवन में जाकर कोई बुरा काम नहीं करेंगे, परंतु माया क्या हमारे फिर वही बुराई बुराइयों में कोशिश करें कि जागे महात्मा गांधी सुबह पढ़ा करके जरूर याद मिलता अपने पर भजन में रहस्य था, बड़ा रहस्य था, प्रत्येक मनुष्य सो रहा है, सो रहा है, वहां पर आते हैं तो कहते हैं जागो जागो जाग, यही काम करते हैं जागृत, और जो जागृत हो जाते हैं उनको नाम का कुछ अंश मिल जाता है, बड़े ही भाग्यशाली हैं। महापुरुष जी कहते हैं कि ऐसे भागशाली भक्तों की यदि मुझे चल राज मिल जाए तो मैं धन धन हो